الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات پڑھیں محمد. سورہ اخلاص سورہ توحید دو نام ہیں سورہ قل ھو اللہ کے. یہ مکے میں نازل ہوئی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مکے اور مدینے دونوں میں نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. بسم اللہ کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ بسم اللہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ لفظی تکرار ہے صرف, معنوی تکرار نہیں. ہر بسم اللہ کا معنی اپنی سورہ کے مضمون کے اعتبار سے ہے. یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی قل ھو اللہ کے معنی کے اعتبار سے ہے. قل ھو اللہ بتاتا کیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں, ذات میں بھی صفات میں بھی اور افعال میں بھی. بس خداوند عالم کے نام سے شروعات ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے, اور اس رحمانیت اور رحیمیت میں کوئی شریک نہیں خداوند عالم کا. بس رحم کرنے میں کسی آلے کی ضرورت نہیں خداوند عالم کو. قل ھو اللہ احد, قل سے مراد کیا ہے؟ آپ ہم پڑھتے ہیں ہر روز اس لفظ کا تکرار ہوتا ہے کہ قل. قل اشارہ کرتا ہے کہ اس جہاں میں سب سے بڑے فیض الہی کے واسطے رسول اکرم ہیں. اگر کسی نے توحید تک پہنچنا ہے, اگر کسی نے خداوند عالم کے بارے میں سوال کرنا ہے تو اے رسول تیرے پاس آئے. قل تو کہہ ان سے, اذا سألک عبادی انی فانی قریب, جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دے کہ میں بہت قریب ہوں. بس سوال کرنے کس کے پاس آئے انسان؟ فیض الہی, واسطہ فیض الہی کے پاس. اگر آپ خطبات امام حسین میں غور کریں تو مثال کے طور پہ محمد ابن حنفیہ نے اگر امام حسین کو روکا کہ آپ یمن چلے جائیں یا مکے میں ہی رہیں, تو سوچیں آپ یہ کہا کہ آپ سوچیں, تو دوسرے دن جو امام کی طرف سے جواب ملا کہ میں نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تو سر کٹائے کر بلا کے میدان میں اور تیرے گھر والوں کو قیدی ہونا دیکھنا چاہتا ہے. بس خود امام حسین کے لیے واسطہ فیض الہی رسول اکرم ہے. پیغام پہنچانے کا طریقہ کون ہے؟ پیغام پہنچانے کا وسیلہ کون ہے؟ رسول اکرم. بس سب سے بڑے فیض الہی کے واسطے اس جہاں میں رسول اکرم ہے. تبھی کہا گیا کہ اول المسلمین, فرما برداروں میں سے مراتب کے لحاظ سے ان کا جو نمبر ہے وہ پہلا ہے. قل ھو اللہ احد, ہوا کہتے ہیں ضمیر شان کو. ضمیر شان عربی میں اس کے بعد جو جملہ آئے بتاتا ہے کہ یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے, یہ جملہ بڑی اہمیت والا ہے. قل ھو اللہ احد, یہ اللہ احد بڑا اہمیت والا جملہ ہے. کون آ کے بتائے گا؟ ھو ضمیر شان. بس ضمیر شان نے آ کے بتایا کہ اللہ احد ایک مہم ترین جملہ ہے. تمام معارف میں اگر یہ جملہ حل ہو جائے تو تمام معارف آپ کے حل ہو جائیں گے. تو نبوت آپ کی حل ہو جائے گی, امامت آپ کی حل ہو جائے گی, قیامت آپ کی حل ہو جائے گی, اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے اللہ ہو احد. عرفا کہتے ہیں کہ ہوا ضمیر غائب ہے. ہوا تو ضمیر غائب ہے, اس کے ذریعے اشارہ ہے خداوند عالم کی ذات کی طرف کہ جس کی کبھی بھی معرفت نہیں ہو سکتی. ہوا اشارہ ہے خداوند عالم کی ذات کی طرف کہ اس کی کبھی بھی معرفت نہیں ہو سکتی, بلکہ خداوند عالم کی معرفت کیسے ہو؟ اسماء کے ذریعے, صفات کے ذریعے. اللہ اس میں جلالہ ہے. قل ھو اللہ احد, اللہ اس میں جلالہ ہے. خاص نام ہے خداوند عالم کا, یہ کسی اور کے لیے नहीं। खुदावंद आलम के असमा की दो किस्में हैं। बाज असमा तमाम अजमत खुदा को बताते हैं, बाज असमा बाज अजमत खुदा को बताते हैं। लफ्ज़ अल्लाह खुदा की तमाम अजमत को बताता है। हर अजमत रहीम राज़िक हई कादिर आलिम, जो भी अजमत खुदा है, जो भी कमाल खुदा है, इससे ही मालूम होता है, इस लफ्ज़ से मालूम होता है। आलिम सिर्फ किसको बताता है? इल्मे खुदा को। इसी तरह आयात खुदा की भी इस जहां में दो किस्में हैं, दो अकसाम हैं। बाज़ आयात तमाम अजमत खुदा को बताती हैं, जिस तरह मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं। नहनु अस्माउल हुस्ना, हम मजहर अस्माए हुस्ना हैं। और बाज़ आयात बाज़ अजमत खुदा को बताती हैं, जैसे जन्नत है तो रहमत खुदा को बताती है, जहन्नम गज़ब खुदा को बताती है। कुल हुवल्लाहु, अल्लाह इसमें जलाला है, इसमें आज़म भी कहते हैं, इसमें जलाला यानी तमाम सिफात कमालिया के मजमूए को लफ्ज़ अल्लाह कहते हैं। अहद, कह दो वो खुदा एक है, यकता है। सवाल ये है, अब पहले एक चीज़ जो बतानी थी कि इखलास का माना क्या है। पहले खुतबे में अली अलैहिस्सलाम के नहजुल बलागा के पहले खुतबे में कहा कि कमाल तौहीद ही अल इखलास लहू। कमाल तौहीद क्या है? कि इखलास इंसान करे उसके लिए, इखलास दिखाए। कहा कमाल इखलास ही नफी सिफात अनहो। कमाल इखलास क्या है? कि उससे नाकिस सिफात को दूर किया जाए, आलम इम्कान की सिफात को उससे क्या किया जाए? दूर किया जाए। कैसे हम दूर करें, कैसे हम इखलास दिखाएं कि खुदावंद आलम से ये नाकिस सिफात दूर करें? तारीफ अगर करें खुदावंद आलम की तो कैसे करें ताकि खुदावंद आलम नाकिस सिफात से दूर हो? आया कोई तरीका बताया कुरान करीम ने या मोहम्मद और आले मोहम्मद ने? हुशाम इबन सालिम इमाम जाफ़र सादिक अलैहि सलाम के शागिर्द हैं। हुशाम इबन हकम एक हैं। हुशाम इबन हकम इमामत में माहिर थे, जो मुनाजरे करते थे इमामत के मौजू पे। हुशाम इबन सालिम माहिर हैं तौहीद में, इमाम के शागिर्द हैं, माहिर हैं तौहीद में। इमाम ने सवाल किया, अतनातुल्ला, क्या तू ए हुशाम, क्या तू खुदावंद आलम की तौसीफ़ बयान करते हो, तारीफ़ करते हो? फ़कुल तो नाम, कहा हाँ। काला, इमाम ने कहा तारीफ कर खुदा की, क्या कहता है तू खुदा की तारीफ में? कुल तो लहू, जनाब हुशाम ने कहा, मैंने कहा हुआ समी उल बसीर, वो सुनने वाला देखने वाला है। काला हाजही सिफतुन यश्तरिकु फिल मखलूक, इमाम ने कहा कि ये ऐसी सिफत बयान की है जो मुश्तरक है मखलूक के साथ। शागिर्द बड़ा बाअदब था, शागिर्द बड़ा बाअदब था, ये नहीं कहा कि अब मैं और तारीफ करता हूँ। सवाल किया, कुल तो फ़कई फ़तन आतु, किस तरह मैं उसकी तारीफ़ बयान करूँ? यबन रसूलल्ला, ए रसूल खुदा के बेटे। फ़काल, इमाम ने फरमाया हुआ नूर ला ज़ुल्मत फ़ी, वो ऐसा नूर है जिसमें कोई तारीख ही नहीं, जुदाई कर दी। यानी हुशाम इबन हकम ने किस तरह कहना था अगर खुदा की तारीफ़ करनी थी? हुआ समी उन ला जहलफ़ी, वो ऐसा समी है जिसमें कोई जहालत का तसव्वुर नहीं। हुआ बसीर ला जहलफ़ी, वो ऐसा बसीर है जिसमें जहालत का कोई तसव्वुर नहीं। ये तरीका समझाया इमाम ने। हुआ नूर उन ला ज़ुल्मतफ़ी, वो ऐसा नूर है जिसमें कोई ज़ुल्मत नहीं। वह हयात उन ला मौतफ़ी, ऐसी ज़िंदगी है जिसमें मौत का कोई तसव्वुर नहीं। वह इल्म उन ला जहलफ़ी, ऐसा आलिम है जिसमें जहालत का कोई तसव्वुर नहीं। वह हक उन, ऐसा हक है ला बातिलफ़ी, जिसमें कोई बातिल का अंदेशा नहीं। उसके बाद जनाब हुशाम ने कहा फ़खरज तो मिन इंदही, मैं निकला इमाम के पास से। व अना आलम बिन नास बित तौहीद, मैं उस वक्त लोगों की निस्बत सबसे बड़ा आलिम था तौहीद का। इखलास क्या है? कि इंसान के साथ जो मुश्तरक सिफात हैं उससे दूर किया जाए, खुदावंद आलम की सिफात को। کمال اخلاص لہی اخلاص لہو، کمال اخلاص کیا ہے؟ نفی الصفات عنہ، صفات کی اس سے کیا کی جائے؟ نفی کی جائے. بس اخلاص یعنی جو صفات مشترک ہیں مخلوق کے ساتھ اس سے خداوند عالم کی کیا کی جائے؟ دوری کی جائے، جدائی کی جائے، تمیز دی جائے. عہد، مہم ترین لفظ. ایک عہد ہے، ایک واحد ہے. ایک لفظ عہد ہے، ایک واحد ہے. کیا فرق ہے؟ آیا ایک ہی معنی میں ہیں یا ان کے درمیان فرق ہے؟ قرآن کریم سے سوال کرتے ہیں کہ لفظ عہد اور واحد میں فرق کیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ واحد وہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو، واحد وہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو. جب بھی آپ قرآن میں جائیں گے تو واحد کے ساتھ ایک صفت لائی گئی ہے قہار کی. واحد کے ساتھ لمن الملک والیوم، آج کس کی حکمرانی ہوگی؟ للہ الواحد القہار، خدا واحد. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جناب یوسف نے ان قیدیوں سے کہا کہ متفرق خدا بہتر ہیں، ارباب رب بہتر ہیں، یا خدائے جو واحد قہار ہے؟ اس واحد سے مراد کیا ہے؟ پہلے یہ سنیے گا، ہمارے مذہب کے علاوہ تمام مذاہب نے خداوند عالم کو واحد عددی مانا ہے. ہمارا یہ امتیاز ہے کہ ہم توحید میں دوسروں سے جدا کیسے ہوتے ہیں اس واحد عددی میں، کہ ہم خداوند عالم کو واحد عددی نہیں مانتے. ایسا واحد ہے جس کے بعد ثانی کا کوئی تصور نہیں. رسول اکرم کی بھی احادیث ہیں، امام علی علیہ السلام نے پہلے خطبے میں کہا وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ حَدَّهُ، جس نے اس کو گنا، جس نے اس کو شمار کیا، اس نے اس خداوند عالم کی کیا کر دی؟ حد بندی کر دی. اور جس نے اس کی حد بندی کر دی اس نے اس کی ازلیت کو باطل کر دیا، اور جس نے اس کی ازلیت کو باطل کر دیا وہ جاہل ہوا خداوند عالم سے، جہالت میں مبتلا ہے وہ. بس واحد عددی، اگر ہم خداوند عالم کو واحد عددی مانیں، آپ سے سوال ہے آیا ہے کوئی ایسا عدد جس کے بعد کوئی عدد نہ ہو؟ ایسا کوئی عدد بتائیں جس کے بعد کوئی عدد نہ ہو. مثال کے طور پہ نعوذ باللہ، اگر ہم خداوند عالم کو کیا کریں کہ وہ سو کے عدد پہ ہے، سو والا عدد ہے، سو والا عدد ہے، تو سو میں جو کمالات تھے ایک سے لے کے 99 تک وہ آ گئے، لیکن 101، 102، 103 یہ شامل نہیں ہوئے. بس بہت سارے کمالات اس سے رہ گئے. عدد اگر کسی کو مانا جائے تو بہت سارے کمالات اس سے رہ جاتے ہیں. بس نعوذ باللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم کیا ہو؟ عدد ہو. کیسا واحد ہے؟ کہا قہار ہے. قہار کا معنی کیا ہے یہاں؟ قہار سے مراد ہے کہ ایسا واحد ہے جو ہر ایک پہ محیط ہے، ہر ایک پہ غالب ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ نجوہ کی آیت نمبر 7 ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. سورہ نجوہ کی آیت نمبر 7 ہے جو فرماتی ہے کہ خداوند عالم کیسا واحد ہے، کیسا تیسرا ہے، کیسا چوتھا ہے، کیسا پانچواں ہے. جی قرآن کریم فرماتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہے ان تین کی سرگوشی مگر یہ کہ هو رابعهم، وہ چوتھا ہے ان کا. کفر کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، واحد عددی ماننا قرآن کریم نے کہا ہے کفر ہے. واحد عددی ماننا کفر ہے. لقد کفر الذین، سورہ مائدہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، بتحقیق کفر اختیار کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ خدا تین میں سے تیسرا ہے. خدا تین میں سے تیسرا ہے. उन्होंने कुफर इख्तियार किया, बस वाहिद अददी खुदावंद आलम नहीं, कुरान करीम ये कह रहा है। अब ये कौन सा है? अब नहीं उन तीन की सरगोशी मगर ये कि वो चौथा है उनमें, ये नहीं कहा कि उन तीन में तीसरा खुदा है, कहा उन तीन में चौथा खुदा है। बड़ा फर्क है कि कहा जाए कि उन तीन में से तीसरा क्या है, खुदा है, यह कुफर। अगर कहा जाए कि उन तीन में से चौथा क्या है, खुदावंद आलम है। आया ये चौथा अदद है? उसके बाद कहा वला खमसतिन, और नहीं वो पांच मगर के छठा खुदावंद आलम है उनमें। यहां आके इसी आयत ने बताया वला अदना मिन जालिक वला अक्सर, ऐसा खुदा चौथा है, ऐसा खुदा पांचवा है, ऐसा खुदा छठा है कि न ये कम हो सकता है न ज़्यादा हो सकता है। अदद कम भी हो सकता है। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने खुदावंद आलम को वाहिद माना उसने कलील समझा उसे। बस खुदावंद आलम के अलावा हर वाहिद कलील होता है, खुदावंद आलम कलील नहीं होता। बस कहा कि वला अदना मिन ज़ालिक, ये कैसा खुदावंद आलम चौथा है? कहा कि न उनसे कमतर है न उनसे ज्यादा है। कैसा है? वहुवा माअहुम अइनमा कानू, वो उनके साथ है, वो उन पे मुहीत है, वो उन पे गालिब है जहां भी वो रहें। चौथा कौन सा है खुदावंद आलम? उन तीन में चौथा कौन है? उन पांचों में छठा कौन है? खुदावंद आलम। कैसा? के हमेशा उन पे मुहीत, हमेशा उन पे गालिब। ना ये कि तीन में से तीसरा है ताकि क्या हो जाए, शिर्क हो जाए, ताकि तौहीद की नफी हो जाए, ताकि वाहिद अददी हो जाए। यहां मुराद ये है कि खुदावंद आलम अगर तीन में चौथा है, कैसा चौथा है कि न उनसे कम है न उनसे ज्यादा है, नहीं अददी नहीं है, बल्कि वह हुआ मा अहम ऐ नमा कानू, जहां भी वो रहे वो उनके साथ है, हर जगह पे उन पे मुहीत है। बस खुदावंद आलम कैसा वाहिद है? अददी नहीं, बल्कि ऐसा वाहिद जो हर एक पे मुहीत है, हर एक पे गालिब है, हर एक के साथ है। ऐ नमाकुन, तुम जहां भी तुम रहो खुदावंद आलम तुम्हारे साथ है। अब इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहि सलाम सहीफ़े सज्जादिया में योम अरफा की दुआ में फरमाते हैं अंतल्लज़ी ला ज़िद्द माक, तू वो है कि तेरा जिद कोई नहीं, फयुआनिद, ताकि वो तेरा मुकाबला कर सके, वला इदल लक, नहीं कोई तेरा रदीफ ताकि वो तुझे कसीर कर सके, वला निद्दलक, और नहीं तेरा कोई मिसल ताकि वो तुझसे बराबर हो सके। बस खुदावंद आलम का कोई मिसल नहीं, खुदावंद आलम का कोई जिद नहीं ताकि उससे क्या किया जाए, मुकाबला किया जाए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहजुल बलागा में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुद्रिकुहुल शवाहिद वला तहवीहिल मुशाहिद वला तराहुन नवाजिर वला तहजुबुहुस सवातिर वाहिदुन ला बिअददिन, ऐसा वाहिद है जो अदद के साथ नहीं, वदाइमुन ला बिअमदिन, हमेशा वाला है लेकिन मुद्दत के साथ नहीं, जमाने के साथ नहीं, कायमुन, ऐसा कायम है, ला बिअमदिन, जिसे सुतून की कोई ज़रूरत, जिसे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बस खुदावंद आलम कैसा वाहिद है? खुदावंद आलम वाहिद कहार है। वाहिद कहार से मुराद क्या है कि हर एक के साथ है, वो मुहीत है हर एक पे जहाँ भी वो रहें, तीन में से तीसरा नहीं बल्कि तीन में से चौथा है, तीन में से चार में से पांचवा खुदावंद आलम है, बस हर एक के साथ है वो जहां भी रहें। ये तो वाहिद। अहद से क्या मुराद है? वाहिद से मुराद है कि खुदावंद आलम हर एक पे गालिब है, अददी मुराद नहीं है, सानी उसका कोई नहीं, ला सानिया लहू, उसका कोई सानी नहीं। अहद से क्या मुराद है? अहद से मुराद है कि खुदावंद आलम मुरक्कब नहीं, मुरक्कब हमेशा मोहताज होता है अज्जा का। पानी को ले लें, पानी मुरक्कब है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, बस एक चीज़ अगर ख़त्म हो जाए, एक चीज़ चली जाए तो पानी का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। बस जहन में रखिएगा, मुरक्कब हमेशा मोहताज है किसका? यहाँ अहद से मुराद क्या है? पूरी आयत ये बता रही है कि खुदावंद आलम मुरक्कब नहीं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, क्योंकि विलादत के लिए मुरक्कब का होना ज़रूरी है, तरकीब का होना ज़रूरी है। हत्ता के अल्लामा तबतावी फरमाते हैं कि माँ जब अपने बच्चे को जुदा करती है अपने आप से तो वो उसका जुज है, अपने जुज को तक जुदा करती है अपने आप से, वो उसके जिस्म का एक हिस्सा होता है। बस अहद से मुराद क्या है? अहद से मुराद है कि खुदावंद आलम मुरक्कब नहीं, कि ताकि वो मोहताज हो जाए किसका? अज्जा का। बस कुल हुवल्लाहु अहद, अहद और वाहिद के दरमियान क्या आ गया? फ़र्क आ गया कि वाहिद जो हर एक पे गालिब और उसका कोई सानी नहीं, अहद जो अज्जा नहीं रखता, जो तकसीम नहीं होता, जो मुरक्कब नहीं है। अल्लाहु समद, खुदावंद आलम समद है। समद से मुराद क्या है? समद से मुराद है कि ऐसी ज़ात जिसकी तरफ इंसान मोहताज हो, सिफात में भी, ज़ात में भी, आसार में भी, ऐसी ज़ात जिसकी तरफ हर वजूद मोहताज हो, हर वजूद अपनी हाजत को पूरा करता हो, ज़ात में भी, सिफात में भी। ज़ात में के हमारी ज़ात को वजूद कहाँ से मिला? हमारी नस्बत क्या है खुदावंद आलम की नस्बत? फ़कीरी। या अय्युहन नास अंतुमुल फ़ुक़रा इलल्लाह, ए लोगो तुम फ़कीर हो खुदा की मानिंद। वजूदी लिहाज से तुम्हारा कोई माना नहीं बनता अगर खुदावंद आलम ना हो। खुदावंद आलम से अगर जुदा हो जाओ तो तुम्हारा कोई माना नहीं बनता। जिस तरह हर्फ की मिसाल के हर्फ अपना माना देता है ऐसे मोरफेल से मिलके, इसी तरह इंसान का माना कब बनेगा? जब वो खुदावंद आलम के सामने झुके, खुदावंद आलम को गनी तसव्वुर करे, अपने आप की हकीकत समझ ले के मेरी हकीकत क्या है? फ़कीरी है। समद, वैसे समद का लुगवी माना क्या है? कस्त करना। बस हर चीज़ उसकी न्याजमंदी का कस्त करती है। फ़कीर को क्या चाहिए? कोई न्याजमंद चाहिए ताकि अपनी हाजात को पूरा कर सके। ये जो दरवाज़े पे आता है फ़कीर, किस ख्वाहिश पे आता है? कि ये कोई न्याजमंद का घर है, बेन्याज, बेन्याज का घर है, बेन्याज का घर है, माजरत, वो कस्त न्याजमंद यानी बेन्याज की तरफ क्या करता है? कस्त करता है, लफ्ज़ थोड़ा सा। तो फ़कीर को हमेशा बेन्याज की ज़रूरत है, फ़कीर को हमेशा बेन्याज की ज़रूरत है कि वो बेन्याज की तरफ आए। अगर बेन्याज नहीं मिला उसे तो वो कभी भी उसका जीना नहीं हो सकता, उसकी मईशत नहीं चल सकती। बस हमेशा न्याजमंद को बेन्याज की ज़रूरत है। बस खुदावंद आलम समद है, हर न्याजमंद उसकी तरफ कस्त करता है। बस बेन्याज है अल्लाहु समद। यहाँ लम यलिद वलम यूलद उसकी तारीफ़ है समद की। लम यलिद वलम यूलद तारीफ़ समद है। अगर आप कहें कि कुरान करीम समद किसे कहता है, कहें कि जो लम यलिद वलम यूलद हो, जो न्याजमंद ना हो, जो बेन्याज हो। क्यों? जब आपने कहा कि खुदावंद आलम न्याजमंद नहीं बल्कि बेन्याज है, खुदावंद आलम बेन्याज है, तो बेन्याज है जो बेन्याज हो उसे बेटे की कोई ज़रूरत नहीं, उसे कोई किसी बाप की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाप और बेटे की ज़रूरत उससे है जो न्याजमंद हो, जो मोहताज हो। बस मोहताज को ज़रूरत है कि वो, बस खुदावंद आलम के लिए ना कोई बेटा है ना किसी का बाप है खुदावंद आलम। क्यों? क्योंकि वो समद है, क्योंकि वो समद है, क्योंकि वो बेन्याज है। बस लम यलिद व लम यूलद, ये आप ये भी कह सकते हैं कि वो मुरक्कब नहीं, वो अज्जा नहीं रखता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं उसका कोई हमसर अहद, कोई एक किस्म कोई। बाज़ मुफसरीन ने कहा है मुराद कुफ, कुफ से मुराद बीवी है, जोज है, कि कोई हमसर नहीं। बाज ये कहते हैं। अल्लामा तबतबी फरमाते हैं कि कुफ वन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। किस में? न ज़ात में, न अफ़आल में, न सिफात में। सिफात में भी उनका उसका कोई हमसर नहीं है, ज़ात में भी उसका कोई हमसर नहीं है, अफ़आल में भी उसका कोई हमसर नहीं। बस खुदावंदे आलम न्याजमंद नहीं किसी हमसर का, न ज़ात में, न अफ़आल में, न सिफात में। बस है कौन सा मोहताज? मोहताज है कौन? न्याजमंद है क्या? हौन है कौन? हज़रत इंसान। हज़रत इंसान ही न्याजमंद है। और ये आलम इमकान ही, कुरान करीम ने ये कहा कि या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़रा इलल्लाह, ए लोगो तुम फ़कीर हो खुदा की नस्बत। अल्लामा तबतबी फरमाते हैं कि इस नास से मुराद, नास को क्यों लाया गया, इंसान को क्यों लाया गया? अशरफियत की वजह से, अशरफ होने की वजह से। वगरना आलम इमकान पूरा, आलम इमकान यानी ये पूरा जहां, पूरा जहां मोहताज है, पूरी मखलूकात मोहताज है खुदावंदे आलम की। बस खुदावंदे आलम ही हर न्याजमंद की मुंतहा है। तभी कुरान करीम कहा कहता है कि इला रब्बिकल मुंतहा, इला रब्बिकल मुंतहा, कि ए इंसान तेरी इंतहा किसकी तरफ है? अपने परवरदिगार की तरफ। अपनी अपनी ज़ात में भी तू मोहताज है किसकी जानिब? खुदावंदे आलम की जानिब। अपनी सिफात में भी मोहताज है किसकी जानिब? खुदावंदे आलम की जानिब। अपने आसार में भी मोहताज है किसकी जानिब? खुदावंदे आलम की जानिब। बस सिफात अगर उसे मिलनी है, अगर वो सिफात चाहता है, मर्तबा चाहता है, सिफात आला चाहता है, तो वो ले कहाँ से? बंदगी किसकी करे? खुदावंदे आलम की। सुबहान अल्लज़ी, मेराज पे पहुँचे तो बंदगी किसकी इख्तियार करे? सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही। बस खुदावंदे आलम कहता है बंदे से कि न्याजमंद बन के आ, मोहताज बन के आ, अब्द बन के आ। तभी मुफस्सरीन कहते हैं, उरफा कहते हैं कि अब्द का मकाम सबसे बालातर है कुरान में। जिसे समझो अब्द कहा जाए वो सबसे बालातर है इंसानों में से। रसूल अकरम को अब्द कहा गया, जहां भी अब्द कैद के बगैर आए कुरान करीम में, समझो कि रसूल अकरम है। जहां भी अब्द कैद के बगैर आए, सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्द ही, यहां कोई कैद नहीं आई। सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्द ही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। एक एक दफा कैद आई है कुरान करीम में कि हमारा हमारा बंदा यूनुस था, हमारा बंदा साले था। बस बंदे के साथ साले की, जनाबे साले की कैद आई, तो वहां वो नबी मुराद है। जहां कैद के बगैर हो वहां रसूले अब्द है क्या? अब्द है क्या? अब्द बनता कब है इंसान? अब्द उस वक्त बनता है जब इंसान नफ्से मुतमैन्ना का मालिक बन जाए। नफ्से मुतमैन्ना बनता कब है इंसान? जब इंसान भी खुदा से राजी हो जाए और खुदा भी इंसान से क्या हो जाए? राजी हो जाए। रिजा है क्या? रिजा है क्या? रिजा अमले खारिजी जो इंसान से वाक़े हो, जो इंसान अंजाम दे अमले खारिजी, मुकम्मल तौर पे वो मुनासिब हो साहिब के लिए। मुकम्मल तौर पे इंसान का अमल साहिब के लिए, नहीं खुदावंदे आलम के मुनासिब हो, और उसी के लिए वाक़े हो और किसी के लिए ना वाक़े हो। इस आयत में अगर आप देख लें, का या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमैन्ना, इरजी इला रब्बिक, तेरा मद्दे नज़र सिर्फ कौन हो? रब। अब्दुल रज़ाक काशानी, शायद पहले भी बयान किया है कि अब्दुल रज़ाक काशानी कहते हैं कि एक इंसान वो है जिसको वलीमे की दावत मिलती है अपने दोस्त की तरफ से, लेकिन जाता खुशनूदी खुदा के लिए है। एक इंसान वो है जो उस वलीमे के लिए जाता है। खुदावंदे आलम का बंदा किस पे मद्दे नज़र रखता है? इला रब्बिक, अपने रब की तरफ, अपने रब की खुशनूदी की तरफ। फदखुली फी इबादी, बस तू दाखिल हो जा मेरे बंदों में। बस ये इबादी बगैर कैद के आया, इनके अव्वल तरीन मिस्ताक मोहम्मद और आले मोहम्मद है। और ये इबादी हैं कौन? कुरान करीम ने खुद कहा कि ये मेरे बंदे ऐसे हैं कि ए शैतान तू कभी भी गलबा नहीं पा सकता। बस कब इंसान बंदा बने? जब वो मिस्ताक बने इखलास का। इखलास है क्या? इखलास ये है कि इंसान खुदावंदे आलम के सानी की नफ़ी करे, खुदावंदे आलम के मुरक्कब होने की नफ़ी करे। मुरक्कब होने की नफ़ी कैसे होगी? कहे कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद कहे तो खुदावंदे आलम के मुरक्कब की नफ़ी करता है। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद से ये इकरार करता है कि मैं नियाजमंद हूँ, मैं फ़कीर हूँ खुदावंदे आलम का। मेरा सहारा है कौन सी ज़ात? खुदावंदे आलम। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़रा इलल्लाह। जब इंसान का सहारा ही खुदावंदे आलम हो, जब इंसान की पलट ही खुदावंदे आलम की तरफ हो। या अय्युहल इंसान, जब इंसान की मुलाकात ही किससे हो? खुदावंदे आलम से हो। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिक, तू रवां दवा है अपने रब की जानिब। कद हन फमुलाकी, ताकि तू उससे मुलाकात करे। हर एक ने मुलाकात खुदा की तरफ ही सफ़र करना है, हर एक ने, लेकिन कैफियत मुख्तलिफ होगी। कोई जमाल खुदा से मुलाकात करेगा, कोई जलाल खुदा से मुलाकात करेगा। कोई जमाल से मुलाकात करेगा, कोई जलाल से मुलाकात करेगा। कोई जन्नत में जाएगा, कोई जहन्नम में जाएगा। बस मुलाकात हर एक ने खुदावंदे आलम से करनी है। हर एक की मुंतहा जब खुदावंदे आलम है तो झुके कहाँ? बंदा किसका बने? इंसान हकीकी परवरदिगार का, हकीकी खुदा का, हकीकी खुदा का ही नियाजमंद बने। अल्लाहु समद यानी हकीकी खुदा की तरफ ही पलटो, समद की तरफ ही पलटो, समद के ही नियाजमंद रहो। कौन से हैं? कौन सा है ये समद? जो मुरक्कब नहीं, लम यलिद वलम यूलद, जो खुद मोहताज नहीं, जो मोहताजी के बगैर है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर आप दुआओं में जाएं, दुआओं में ऐसे जुमले आपको बहुत सारे मिलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु वहदहु, तीन दफा जिक्र हुआ है, वहदहु वहदहु वहदहु। क्या मुराद है तीन दफ़ा जिक्र करने से? मुराद ये है कि खुदावंद आलम का कोई माबूद नहीं, वो वाहिद है ज़ात में भी, सिफात में भी और अफ़ाल में भी। वहदहु वहदहु वहदहु। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।